आशिका ने रिहान के साथ मिलकर समय से पहले ही अपने काम को पूरा कर दिया था, ताकि विराज को उसे वहां रोकने के लिए किसी तरह की चाल चलने का मौका ही न मिले। काम खत्म होते ही सीधा आशिका विराज के पास गई और उसे कल सुबह वहां से निकलने के इंतजाम करने के लिए कहा। जैसा कि गर्व ने आशिका को पहले ही सतर्क किया था, ठीक वही हुआ। विराज आशिका को वहां रोकने के लिए काम का बहाना बना रहा था। उसकी मर्जी के बिना आशिका वहां से नहीं जा सकती थी, ना ही आशिका के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता था। विराज ने आशिका को सोने जाने के लिए कहा, ताकि कल सुबह वो वापस काम पर लग सके। उसके ऑर्डर्स देने के बावजूद आशिका वहीं पर खड़ी उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही थी। इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद ठंडे थे। मैंने तुम्हें कुछ कहा है ऐश? यू कैन गो नाउ, विराज ने सख्त आवाज में कहा। आशिका उससे बहस नहीं कर सकती थी और ना ही उसके ऑर्डर्स अनफॉलो। उसने हल्के से सिर हिलाया और बोली, ठीक है फिर, मुझे उस काम को अभी देखना है जो इतना ज्यादा है कि मैं 2-3 महीने में भी पूरा नहीं कर पाऊंगी। फाइल अभी तैयार नहीं है, सुबह तुम्हें मिल जाएगी, विराज जवाब में बोला। कोई बात नहीं, मुझे फाइल में सिस्टमैटिकली काम नहीं चाहिए। आप मुझे रॉ डेटा दिखा दीजिए और बता दीजिए कि मुझे क्या करना है। आफ्टरऑल आप ही तो हर बार मुझे मेरा काम बताते हैं। आप इतने कॉन्फिडेंट होकर ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा काम है, तो आपको पता तो होगा ना कौन सा काम है, आशिका ने काफ़ी स्मार्टली जवाब दिया। वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी जिसे विराज अपनी बातों और हरकतों से फंसा सकता था। उसे वहां रखने की चाह में विराज एक पल के लिए भूल गया था कि आशिका एक प्रोफेशनल हैकर है जो डार्क वेब में नंबर 1 हैकर्स में से एक है। सुबह तक इंतजार करो, मिल जाएगा, विराज ने अपनी बात को दोहराया। लेकिन मुझे अभी सब करना है, आशिका भी अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोशी छा गई थी। आशिका और विराज एक दूसरे की आंखों में चुनौती भरी नजरों से देख रहे थे। कोई काम होगा तब तो आप मुझे बताएंगे ना कैप्टन विराज, आप सुबह का नाम ले रहे हैं तो ठीक है फिर, सुबह बात करते हैं, सुबह 6 बजे मिलते हैं जब सब काम पर रिपोर्ट करते हैं, आशिका ने सिर हिलाकर कहा और वहां से जाने के लिए पलट गई थी। उन सबको सोने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलता था और विराज लगभग सोने ही जा रहा था। पूरे दिन काम करके वो भी काफी थक गया था और अब आशिका की वजह से उसे ओवरटाइम करना पड़ रहा था। विराज काफी गुस्से में था। आशिका तो सोने के लिए चली गई थी, पर विराज इस वक्त सीधा रिहान के पास पहुंचा। किसी के कदमों की आहट सुनकर रिहान ने जल्दी से स्क्रीन ही बदल दिया था। वैसे भी आशिका और रिहान ज्यादातर बाकी टीममेट से छुपाकर ही काम करना पसंद करते थे। तो तुम उसका साथ दे रहे हो, तुम्हारी वजह से उसने अपना काम जल्दी खत्म कर दिया और अब उसे वापस जाना है, अंदर आते ही विराज गुस्से में रिहान पर फट पड़ा। आपको तो खुश होना चाहिए कैप्टन विराज, आपका काम जल्दी हो गया, लेकिन आप गुस्सा क्यों लग रहे हैं, रिहान ने मुस्कुराकर कहा और उसकी ये मुस्कुराहट विराज को और भी गुस्सा दिला रही थी। विराज अपने गुस्से में रिहान के पास आया और उसका कॉलर पकड़कर उसे धमकाते हुए कहा, तुम्हारी ये स्माइल 2 मिनट में गायब हो जाएगी जब मैं उसे जाकर ये बताऊंगा कि हमें उसे तक पहुंचाने वाले तुम खुद थे, और उसे यहाँ रोकने के लिए मुझे ये करना भी पड़ा तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सोचने वाला। विराज के धमकाने पर रिहान की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई थी। उसने विराज को खुद से दूर धकेला और कहा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुम्हें अपना भाई समझकर अपनी फ्रेंड के बारे में बताया। एक बात याद रखना, मैंने तुम्हें ऐश के बारे में बताया था, ना कि कभी उसे तुम तक लेकर पहुंचा था। बात तो एक ही है ना, तुमने मुझे ये सीक्रेट शेयर किया कि डार्क वेब की हैकर ऐश तुम्हारी फ्रेंड है। तुम पहले से मेरे काम के बारे में जानते थे, फिर भी मुझे कम्पीट करने के चक्कर में तुमने ऐश के बारे में मुझे बताया। वो अपनी आइडेंटिटी किसी को नहीं बताती है। क्या लगता है लिटिल ब्रो, इस छोटी सी गलती के लिए क्या वो तुम्हें माफ करेगी या नहीं, विराज ने भौहें चढ़ाकर पूछा। रिहान को विराज पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। आशिका अपनी आइडेंटिटी को लेकर कितनी सिक्योर रहती थी, ये उससे बेहतर कौन जानता था। आखिर चाहते क्या हो तुम, रिहान ने विराज को घूरते हुए पूछा। ज्यादा कुछ नहीं, फिलहाल के लिए एजेंसी का डेटा स्कैन करो और आशिका के लिए 3-4 महीने का काम निकालो, विराज ने सीधे सीधे कहा। रिहान जोर से हंस पड़ा था। विराज उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। विराज चिढ़ते हुए बोला, हंस क्यों रहे हो, मैंने तुम्हें कोई जोक नहीं सुनाया है। वैसे ये बात किसी मजाक से कम भी नहीं है, कोड रेड जैसी सिचुएशन उसने 20 दिन में संभाल कर तुम्हारी एजेंसी का सेफ्टी लेवल बढ़ा दिया है। तुम्हें क्या लगता है इससे ज्यादा मुश्किल काम तुम्हारे पास मौजूद है, और 3-4 महीने कितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर लो, 10 दिन से ज्यादा उसे रोक नहीं पाओगे, रिहान ने विराज का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना लिटिल ब्रो, मुझे अपना सीक्रेट उससे हाइड नहीं रखना है, तुम्हें रखना है, तो तुम सोचोगे ना कि उसके लिए काम कैसे बढ़ाना है, विराज मुस्कुराकर बोला और आगे बढ़कर रिहान के शर्ट की कॉलर सही करने लगा। जाते वक्त विराज ने रिहान को गुड लक विश किया और फिर वहां से चला गया था। गुस्से में रिहान ने अपना पैर चेयर पर मारा। कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है, रिहान दांत पीसते हुए बोला। विराज अब चैन से सोने जा सकता था, उसने रिहान को ब्लैकमेल करके अपना काम निपटा दिया था। रिहान ने कभी नहीं सोचा था कि आशिका के खिलाफ उसे विराज का साथ देना होगा। दूसरी तरफ गोवा में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर वसुधा और रूही साथ में बैठे हुए थे।
रूही का मुंह उतरा हुआ था और उसे यही लग रहा था कि आज भी ईशिका और अभिमन्यु दोनों साथ में ऑफिस चले जाएंगे। कल भी यही हुआ था। रूही जब ब्रेकफास्ट टेबल पर आई तब सिर्फ अभिमन्यु उसके लिए मौजूद था, ईशिका नहीं। कभी ईशिका उसके पास होती थी तो कभी अभिमन्यु। वसुधा ने रूही के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा और फिर प्यार से उसे सहलाते हुए कहा, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों ही बिजी रहते हैं तो तुम्हें थोड़ा समझना होगा लड़की। तुम कुछ दिनों के लिए अपने नाना नानी के यहाँ क्यों नहीं हो आती? राधिका का भी कॉल आया था। रूही ने वसुधा की बात का कोई जवाब नहीं दिया था और सिर झुकाकर बैठ गई थी। उसको उदास देखकर वसुधा को भी बुरा लग रहा था। रूही को अपने मॉम डैड के साथ रहना है, रूही ने धीरे से कहा। उसने वसुधा की तरफ देखा और कहा, मैं उनका वेट करूंगी, संडे को वो दोनों फ्री होंगे, मुझे नानू नानी के यहाँ नहीं जाना। और तुम्हें वहां भेज भी कौन रहा है? अभिमन्यु की आवाज आई जो डाइनिंग एरिया में ही आ रहा था। अभिमन्यु को देखकर रूही हल्का सा मुस्कुरा दी थी और जल्दी से अपनी कुर्सी से उतरकर अभिमन्यु की गोद में चढ़ गई थी। आज अभिमन्यु तैयार होकर जरूर आया था लेकिन उसने कैजुअल्स पहने हुए थे। रूही ने उसके कपड़ों को देखकर आंखें बड़ी करके कहा, क्या आप मेरे साथ घर रहने वाले हैं? बिल्कुल, और सिर्फ मैं ही नहीं तुम्हारी मम्मा भी, अभिमन्यु ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया और रूही के गाल पर किस कर लिया था। रूही इतने में ही खुश हो गई थी। अभिमन्यु ने उसे वापस उसकी चेयर पर बिठाया और खुद उसके पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया था। बच्ची के चक्कर में ही सही तुम घर पर तो रुके, तुम दोनों से एक लड़की नहीं संभाली जा रही है जबकि तुम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। टाइम दे पाओगे अपने दूसरे बच्चे को? वसुधा ने अभिमन्यु को घूरते हुए कहा। हाँ, सीखना होगा और शुरुआत रूही से ही कर रहा हूँ, अभिमन्यु बोला।
और ईशिका का क्या? वो तुमसे ज्यादा काम को लेकर डेस्परेट रहती है, वसुधा ने सर हिलाकर कहा और डाइनिंग एरिया के एंट्रेंस के डोर तक देखा। ईशिका कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वसुधा ने गहरी सांस लेकर कहा, लगता है फिर से काम पर चली गई। इससे अच्छे वो दिन थे जब हम उसके बारे में नहीं जानते थे और वो पूरा दिन मेरे साथ रहती थी। मैं उसको मिस करती हूँ, हमेशा के लिए तो नहीं लेकिन उसकी प्रेगनेंसी तक आपकी ये कमी वो पूरी करने की कोशिश करेगी। मैंने उसे काम से छुट्टी दे दी है, अभिमन्यु ने बताया, जिसे सुनकर वसुधा खुश हो गई थी। जल्द ही ईशिका भी वहां पर आ गई थी। हमेशा की तरह वसुधा ने ईशिका की ही पसंद को ध्यान में रखकर पूरा नाश्ता बनवाया था। अभिमन्यु ने ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ एक नज़र डाली और फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, जब से ये आई है दादी मुझे पूरी तरह भूल गई हैं, इसने पूरी तरह मेरी जगह ले ली है। ईशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा जो जबरदस्ती चिढ़ते हुए ब्रेकफास्ट कर रहा था। ईशिका मुस्कुराई और अभिमन्यु की तरफ स्वीट डिश करते हुए कहा, तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते? जानबूझकर कर रही हो ना ये, तुम्हें अच्छे से पता है मुझे ये नहीं पसंद है, अभिमन्यु ने मुंह बनाकर कहा। ईशिका उसका चेहरा देखकर हंस पड़ी थी। अभिमन्यु ने उसे पहले ही बता दिया था कि आज का दिन वो रूही के साथ बिताने वाले हैं। रूही उनके बिना काफी अकेलापन महसूस करने लगी थी और अब उन्हें रूही के साथ साथ अपने आने वाले बच्चों को भी समय देने के लिए टाइम निकालना होगा। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद अभिमन्यु ने ईशिका से कहा, चलो ऐसा करो, रूही और दादी के साथ ऊपर मल्टीप्लेक्स में पहुंचो, हम एक मूवी देखने वाले हैं। ईशिका ने सर हिलाया और उनके साथ जाने लगी तो वहीं अभिमन्यु बाहर आ गया था। पृथ्वी कब से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहा था। वो जानबूझकर अंदर नहीं आया ताकि ईशिका को ये ना लगे कि घर पर रुकने का बोलकर अभिमन्यु काम कर रहा है। पृथ्वी के पास जाते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव हमेशा की तरह सख्त हो गए थे। उसने वहां जाते ही सीधे सीधे पूछा, प्रणय के बारे में अभिमान को अपडेट किया? मैंने कर दिया है और साथ ही उस पर नजर रखने के लिए कहा है। मैं पहले ही उसका बैकग्राउंड चेक कर चुका था और कल आपके कॉल के बाद उससे जुड़ी हर एक जानकारी निकाल चुका हूँ। फिर आपको उस पर शक क्यों है? पृथ्वी ने हल्के हैरानी भरे लहजे में पूछा। मुझे नहीं, ईशिका को शक है और इसे मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ऐसा करो, फिलहाल के लिए न्यू स्टाफ हायरिंग बंद कर दो और कोई भी अपने आसपास सस्पिशियस लगे उसे काम से निकाल दो, अभिमन्यु बोला। पृथ्वी ने हल्के से सिर हिला दिया था। कल ईशिका को तसल्ली देने के लिए प्रणय के मामले में अभिमन्यु ने यही कहा था कि वो किसी मासूम को बेवजह काम से नहीं निकाल सकता है, लेकिन अभिमन्यु ने मुंबई आते ही सबसे पहले राजवंश एम्पायर में आधे से ज्यादा एम्प्लॉयज़ को काम से निकाल दिया था। वो प्रणय को अपनी आंखों के सामने रखना चाहता था। बस यही वजह थी कि ईशिका की तसल्ली के लिए उसने उसे मुंबई ट्रांसफ़र किया और अभिमान की देखरेख में छोड़ दिया था। पृथ्वी से बात करने के बाद अभिमन्यु ऊपर जाने लगा था तो वहीं दूसरी तरफ अगले सुबह ईशिका की नींद टूटी। उसने अपनी पैकिंग पहले ही कर ली थी और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी कि कुछ ही घंटे में विराज उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। काम की रिपोर्ट करने और वहां से जाने का सोचकर ईशिका फिर विराज के केबिन में पहुंची, लेकिन इस बार उसके साथ बाकी ऑफिसर्स और रेहान भी मौजूद था। गुड मॉर्निंग ऐश, उम्मीद है तुमने अच्छी नींद ली होगी क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारी नींद उड़ने वाली है, विराज ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा तो वहीं ईशिका के चेहरे पर भी कहीं भी डर नजर नहीं आ रहा था। क्या लगता है विराज ईशिका को रोक पाएगा या नहीं? क्या सच में रेहान ईशिका के खिलाफ विराज की हेल्प करेगा? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।